जया कुंज राधा जे गोपी जन वाला जया गिरिवर जय गोपी जन वाला जय गिरिवर शोदानंदन जय रज जन रंदन शोदान जय शोदानंदन जय रज जन रंदन जया यमुना तीरा बन जया कुंज जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज जय राधा माधव जय कुंज
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोपी गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राम नवमी का उत्सव निकट आ रहा है और कुछ समय बाद ऑडिटोरियम में राम कथा शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर शाम की कक्षा बंद हो जाएगी। तो कुछ तीन चार दिन की बात है कि यहाँ पर कक्षा होगी, तब तक हम श्री राम कथा में से कुछ न कुछ सुन रहे हैं। तो आज हम राम कथा में से कुछ सुनेंगे पद्म पुराण से, और ये कथा कुछ ऐसी है कि शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी हो। अगर सुनी हो तो भी इसको जितना सुने उतना रस मिलता है, पर नहीं सुनी है तो नई है ही है, लेकिन अगर सुनी है तो भी ये नई है, क्योंकि श्री राम कथा क्या है, नित्य नवीन है। स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पर इसका स्वाद मिलता है राम कथा का। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये घटना उस समय की है जिस समय श्री राम वनवास से लौट करके अयोध्या में आ गए हैं, और अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये उस समय की घटना है। घोड़े के पीछे शत्रुघ्न जी सेना के साथ घोड़े की रक्षा में है। अश्वमेध यज्ञ में नियम क्या है कि जो घोड़ा है उसको छोड़ा जाता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी के सभी स्थानों में जाता है, और उसके माथे में एक स्वर्ण पत्र बंधा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि ये घोड़ा महाराज श्री राम ने छोड़ा है, जिसने भी छोड़ा है महाराज श्री राम ने छोड़ा है, और वे इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। जो व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार करता वो घोड़े को पकड़ ले, और हम लोग जो है इस घोड़े की रक्षा में हैं, हम बलपूर्वक इसको छुड़ाएंगे। तो ये चुनौती जो है घोड़े के माथे में सोने के पत्र में लिखी रहती है, और वो घोड़ा जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और पृथ्वी के सभी स्थानों में जाता है, और एक साल के बाद वो घोड़ा वहीं उसी स्थान में वापस आ जाता है। ये घोड़े को पता रहता है सब कुछ, और घोड़े के पीछे रक्षा के लिए सेना चलती है, घोड़े को कोई आगे नहीं बढ़ाता, घोड़ा अपनी इच्छा से आगे बढ़ता है ना। तो ये घोड़ा जो है आगे आगे चल रहा है, शत्रुघ्न जी सेना के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, और शत्रुघ्न जी की सेना में रथों की भी सेना है, पैदल चलने वालों की सेना है, अच्छे अच्छे घोड़े सवारों की सेना है। इस प्रकार से पांचाल देश में गए, कुरु देश में गए, उत्तर कुरु में गए, दशारण देश में गए। शत्रुघ्न जी उन सभी देशों में श्री राम के यश की कथा सुनते थे। लोग कहते थे श्री राम ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्तों की रक्षा की है। अब अश्वमेध यज्ञ की कार्य का अनुष्ठान आरंभ करके श्री राम अपने यश का तीनों लोकों में विस्तार करेंगे और संपूर्ण लोकों की रक्षा करेंगे। उसको बांध दीजिए, कोई घंटा नहीं बजाएगा। इस तरह भगवान का यशोगान सुनते हुए शत्रुघ्न जी पुरस्कार के रूप में लोगों को सुंदर हार देते थे, नाना प्रकार के रत्न देते थे, बहुमूल्य वस्त्र देते थे, और रघुनाथ श्री राम के एक सचिव सुमति जो है शत्रुघ्न जी के साथ साथ चलते थे, शत्रुघ्न जी को सब प्रकार की सूचनाएं देने के लिए, शत्रुघ्न जी को स्थानों का इतना पता नहीं था जितना सुमति को पता था। तो सुमति जो है हर स्थान की सूचना देती थी कि ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है। तो सुमति जो है शत्रुघ्न के साथ सेवा में है। शत्रुघ्न जी अनेक गांवों जनपदों में गए, किंतु श्री राम के प्रताप से घोड़े का किसी ने अपहरण नहीं किया। श्री राम का घोड़ा है ना, तो सब लोग घोड़े को नमस्कार करते हैं और घोड़े को जाने देते हैं कि जाओ भैया, हम श्री राम को मानते हैं, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं वो। इस प्रकार से सभी स्थानों में भिन्न भिन्न देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, यद्यपि महान बल संपन्न थे और बड़ी बड़ी सेना वाले थे, लेकिन क्या करते थे, घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर जाते थे और मोती मणियों सहित बहुत संपत्ति शत्रुघ्न जी को देते थे कि हमारी तरफ से लीजिए, हम आपके सेवक हैं। और कहते थे कि ये राज्य पुत्र पशु और बांधवों सहित सारा धन श्री राम का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते थे। कोई घोड़े को नहीं पकड़ता था। ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न जी आज्ञा घोषित करते और उन्हें भी साथ में लेकर के आगे चल जाते कि चलो घोड़े की रक्षा में आप भी चलो हमारे साथ। तो उन राजाओं को भी अपने साथ ले लेते थे घोड़े की रक्षा में और आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी अहिच्छत्रा नगरी के पास पहुंचे। कौन सी नगरी है? अहिच्छत्रा। अनेक प्रकार के रत्नों से वो पूरी सजी हुई है। सोने और स्फटिक मणि के बने हुए महल हैं और फाटक। वहाँ के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले और सदाचार से सुशोभित थे। वहाँ राजा सुमद राज्य करते थे। राजा का नाम क्या है? सुमद। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था, तमाल ताल के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया और उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी जा पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया। रचना अद्भुत थी, कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर, इतना ऊंचा कैलाश शिखर के समान ऊंचा, शोभा से संपन्न था। उस सुंदर देव मंदिर को देखकर श्री राम ने सुमति नामक मंत्री से पूछा, मंत्रीवर बताओ ये क्या है, किस देवता का मंदिर है, किस देवता का यहाँ पूजन होता है और वो देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान है, ये पूरा कारण बताइए। तो सुमति ने कहा कि एकाग्रचित होकर सुनिए। सुमति कह रहे हैं किससे? शत्रुघ्न जी से। तो आप लोगों को भी सुनना है एकाग्रचित से। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ, इसे आप कामाक्षा देवी का स्थान समझिए। ये जो मंदिर है इसमें कौन सी देवी हैं? कामाक्षा देवी हैं। ये जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाली हैं। अहिच्छत्र नगरी के स्वामी राजा सुमत की प्रार्थना से कामाक्षा देवी यहाँ पर विराजमान हुई हैं, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शत्रुघ्न जी आप इन्हें प्रणाम कीजिए। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुघ्न जी ने कामाक्षा देवी को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। उन्होंने कहा कि हे मंत्रीवर, अहिच्छत्रा नगरी के राजा सुमत कौन है, इन्होंने कौन सी तपस्या की जिसके प्रभाव से ये माता कामाक्षा देवी को संतुष्ट करके यहाँ पर ले आए। सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जहाँ देवता लोग भी आते हैं, ऋषि मुनि भी वहाँ पर तपस्या करते हैं। राजा सुमत ने वहाँ तपस्या की थी। कौन से पर्वत पर? हेमकूट पर्वत पर राजा सुमत ने तपस्या की थी। और बता रहे हैं कौन? सुमति, जो शत्रुघ्न जी के जैसे राम के मंत्री हैं, राजा सुमति ने तपस्या की थी, उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण राजाओं ने जो शत्रु थे एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता माता और प्रजा के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब राजा सुमति तपस्या के लिए विमल तीर्थ में आए, यहीं पर हेमकूट पर्वत में, और वहाँ 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के माता जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्र भाग पर जमी रहती थीं। 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबा करके बड़ी कठोर तपस्या की। 3 साल तक क्या किया? सूखे पत्ते चबाकर। फिर 3 वर्ष तक उन्होंने और कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में पानी में डूबना, जाड़े के दिनों में पानी में इतना डूबे रहना, गर्मी में पंच अग्नि का सेवन करना, 5 प्रकार की अग्नि का सेवन करना, और वर्षा काल में बादलों की ओर मुंह करके मैदान में खड़े वर्षा में। तो 3 साल ये तपस्या की, जाड़ा गर्मी बरसात का कष्ट। फिर 3 साल तक उन्होंने प्राणवायु को रोक करके केवल ध्यान किया, जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय उन्हें इस प्रकार 12वां वर्ष बीत गया, है ना? कैसे 12वां वर्ष? 3 साल तक तो एक पैर से खड़े हुए हुए, है ना, नासिका के अग्र भाग पर देखते हुए। फिर 3 साल तक सूखे पत्ते खाए, है तो 6 साल हो गया। फिर 3 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात का पूरा, कितने हो गए? 9 साल। उसके बाद फिर 3 साल तक प्राणवायु को रोक करके जगदम्बा का ध्यान किया। तो इस तरह से 12 साल बीत गए। तो उनकी भारी तपस्या देकर इंद्र ने विचार किया, और भय के कारण इंद्र को डाह हो गई इनसे। अप्सराओं के साथ कामदेव को जो है बुलाया, कामदेव तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमत की तपस्या को भंग करो। किसने कहा? इंद्र ने कहा। किससे कहा? कामदेव और अप्सराओं से कहा, राजा सुमत की तपस्या को भंग करो। कामदेव ने कहा, मुझ सेवक के रहते आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी सुमत के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए और मैं अपना काम कर लूँगा। ऐसा कहकर के कामदेव अपने सखा बसंत को साथ में लिया, बसंत ऋतु, और अप्सराओं को साथ में लेकर हेमकूट पर्वत पर गया। बसंत ने जाते ही वहाँ के सारे वृक्षों को फल फूलों से सुशोभित कर दिया, बसंत ऋतु। उनकी डालियों पर कोयल कूकने लगे, भ्रमर गुंजार करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लौंग के फूलों की सुगंध आ रही, लौंग के फूलों की सुगंध आ रही। इस प्रकार पूरे वन में बसंत की शोभा छा गई। अप्सराओं में शीर्ष रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमत के पास गई। रंभा का स्वर मनोहर था, मृदंग पड़ाव नाना प्रकार के बाजे बजाने में निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गान आरंभ किया। महाराज सुमत ने मधुर गान सुना, बसंत की छटा देखी और कोयल की मीठी तान सुनी, तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और सारा रहस्य उनके समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगह देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे और खड़े होकर अपना धनुष चढ़ा लिया। किसने? कामदेव ने। इतने में एक अप्सरा अपने नेत्रों को नचाती हुई राजा के पैर दबाने लगी। दूसरी अप्सरा सामने खड़ी होकर कटाक्ष करने लगी। तीसरी शरीर की श्रृंगार जनित चेष्टाएं प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर बुद्धिमान राजा सुमत चिंता करने लगे, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं, इन्हें इंद्र ने भेजा है, ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर रही हैं। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर राजा सुमत ने अपने हृदय में चित्त प्रकार विचार किया। इसके बाद देवांगनाओं से बोले, देवियों आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा के स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस सुख की चर्चा की है वो तुच्छ है, अनिश्चित है मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी महान बने वही मुझे सब कुछ देंगे क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदन वन कुछ भी नहीं है, वो अमृत किस गिनती में है जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला है। राजा का वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया किंतु वो उनकी कुछ भी हानि ना कर सका। सुंदरी अप्सराएं अपने कटाक्ष नूपुरों की झनकार आलिंगन चतवन के द्वारा उनके मन को मोह में ना डाल सकी। अंत में निराश होकर जैसी आई वैसी लौट गईं। इंद्र से बोली, राजा सुमत की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अप्सराओं ने कहा। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र भयभीत हो गई। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमत को अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थित देकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। किसकी? जगदम्बा की। अपने चार भुजाओं में धनुष बाण अंकुश और पास धारण किए थी। माता का दर्शन पाकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। अब यहाँ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये सब बातें कि कोई व्यक्ति अगर दुर्गा की भी पूजा करे, निष्काम भाव से पूजा करे, तो वो भी जो है श्री कृष्ण की या राम की भक्ति में ही आता है। यहाँ पर उसकी भौतिक कामना नहीं है राजा की। और भौतिक कामना ना होने पर अगर कोई पूजा करे अन्य देवता की, तो उस पूजा से भी वो कहाँ पर आता है? कृष्ण की भक्ति में आता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि दुर्गा माता को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थीं। राजा सुमत के शरीर में रोमांच हुआया और भक्तिभाव से उत्कंठित हो गई। गदगद स्वर से माता की स्तुति करने लगे। देवी आपकी जय हो, महादेवी भक्तजन सदा आपकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके चरणों की आराधना में लगे रहते हैं, आप पाप के स्पर्श से रहित हैं, आपके प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर सारे जगत का कल्याण करते हैं, देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आप ही विद्या और आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। मतलब स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्र मान करके स्तुति नहीं कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र देवी हैं। क्या कहा उन्होंने कि आप ही भगवान विष्णु की महामाया है, तो स्वतंत्र नहीं है, है ना। तो देवी भी प्रसन्न होती हैं इस बात से, देवी भी प्रसन्न होती हैं। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाली आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। माता आप दया की स्वामिनी, सबकी वंदनीया और भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं, मेरा पालन कीजिए। क्या वरदान? कुछ नहीं, केवल आप मेरा पालन कीजिए, है ना। तो इतने से देवी जो है उनको सही दिशा बताती हैं। मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। सुमति सुना रहे ना ये कथा, किसको सुना रहे हैं? शत्रुघ्न जी को सुना रहे हैं। इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर माता कामाक्षा अपने भक्त सुमत से बोली, बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता ने क्या कहा? बेटा क्या करो? कोई उत्तम वर मांगो। माता का ये वचन सुनकर राजा सुमत को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य और अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। तो कामाक्षा देवी ने कहा, सुमत तुम सर्वत अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी पराजय ना हो। जिस समय महायशस्वी श्री राम रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके भाई शत्रुघ्न वीरों से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। अब देखो ये सुमति को ये सब कुछ पता है, और वो समय अभी आ चुका है। शत्रुघ्न जी से बता रहे हैं कि देवी कामाक्षा ने ये कहा था राजा सुमंत से कि जिस समय श्री राम रावण को मारकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे उस समय शत्रुघ्न जी उनके भाई घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आ गए और शत्रुघ्न जी वो बता रहे हैं, सुमति तुम उन्हें अपना राज्य समृद्धि और धन सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करो, घोड़े की रक्षा में तुम भी जाओ और अंत में ब्रह्मा इंद्र और शिव से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों के द्वारा योगियों को भी नहीं प्राप्त होती। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्धान हो गई और सुमद भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिच्छत्रा नगरी के राजा हुए, वही ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि ये सब प्रकार से समर्थ और बल से संपन्न है तथापि तुम्हारे घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, हालांकि इनमें बहुत बल है या आपके घोड़े को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कामाक्षा देवी ने इनको आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि जब घोड़ा आएगा और शत्रुघ्न जी आएंगे तो तुम्हें क्या करना है, घोड़े को नहीं पकड़ना है, युद्ध नहीं करना है, क्या करना है, अपनी पूरी संपत्ति राज्य उनको समर्पित करना है और घोड़े के साथ जाना है घोड़े की रक्षा के लिए, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दी है, महामाया की शिक्षा है। देखो महामाया भी जो है भगवान की भक्ति सिखाती है, अगर हम भौतिक कामना नहीं करते हैं तो महामाया भी भक्ति सिखाती है। तो ये कथा शेष जी सुना रहे हैं, ये कथा शेष जी सुना रहे हैं, सोचिए कितनी सुंदर कथा है। अब शेष जी सुनाए हैं, किसको सुना रहे हैं? मात्स्यायन ऋषि को सुना रहे हैं। शेष जी कहते हैं, सुमति के मुख से राजा सुमत का ये वृतांत सुनकर शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी अपने सेवकों से घिरकर राजसभा में विराजमान थे। अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी का नाम क्या है? सुमद। तो अपने सभा में विराजमान थे, ब्राह्मण और वैश्य भी उनके पास बैठे थे, उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामी ना जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है। ये सूचना दी कि क्या सूचना दी, ना जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है। ये सब लोग पढ़ना नहीं जानते ना, तो बताया भी कहां से आया घोड़ा। ये सुनकर राजा ने तुरंत अच्छे सेवक को भेजा, राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। अच्छा सेवक होता है तो उसके पास बहुत दिमाग होता है, इसलिए आसपास की सब चिन्ह देख करके, संकेत देख करके वो उसको पता लगाना है कि कहाँ से घोड़ा आया। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और राजा सुमत के पास आकर आरंभ से ही सारा वृतांत कह सुनाया। श्री राम का घोड़ा है ये सुनकर बुद्धिमान राजा को चिरकाल की पुरानी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने सभी लोगों को आज्ञा दी, धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। सब लोग इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर राजा सुमत अपने पुत्र पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न जी के पास आए। शत्रुघ्न ने मंत्रियों के साथ देखा वीर राजा सुमत आ रहे हैं, राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूं, आपने यहां दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया है, मेरा सत्कार हो गया क्योंकि आपने दर्शन दिया तो मेरा सत्कार हो गया। शत्रुघ्न जी स्वयं दर्शन देने आए किसी के पास तो उसके लिए कितने सौभाग्य और सत्कार और सम्मान की बात है कि मेरे पास दर्शन देने के लिए स्वयं आए हैं श्री राम के छोटे भाई। दुनिया जो है दर्शन करने जाती है जिन भगवान का, उन्हीं के छोटे भाई मुझे दर्शन देने के लिए आए तो मेरा कितना सत्कार हुआ। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चिरकाल से इस घोड़े के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षी देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था वो आज और इस समय पूरी हुई है। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए और मेरे समस्त कुल को पवित्र कीजिए। क्या कीजिए? मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए और मेरे पूरे कुल को पवित्र कीजिए। ऐसा कहकर राजा ने सफेद हाथी पर शत्रुघ्न और पुष्कल को चढ़ाया। पुष्कल भरत के पुत्र हैं। शत्रुघ्न जी कौन लगे? चाचा। शत्रुघ्न जी के चाचा लगे? भतीजे। मैंने पूछा शत्रुघ्न जी के कौन लगे तो आपने कहा चाचा। शत्रुघ्न जी के भतीजे लगे हैं। पुष्कल, तो शत्रुघ्न और पुष्कल को सफेद हाथी के ऊपर चढ़ाया और पीछे स्वयं सवार हुए। उसी हाथी के में पीछे वो सवार हुए और फिर महाराज सुमत की आज्ञा से भेरी और पड़व आदि बाजे बजने लगे। वीणा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी और इन समस्त बाजों की तुमल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया और उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की और वे वीरों से शोभित हो अपने घोड़े को साथ लेकर राज मंदिर में उतरे। सफेद हाथी से अब राजा के मंदिर में उतरे। उस समय राजा का भवन तोरण आदि से सजाया गया था और स्वयं राजा सुमत शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। अपने मंदिर में भी शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे हैं कि मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य आदि के द्वारा शत्रुघ्न जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया। शेष जी कहते हैं तब राजा सुमद ने श्री राम की उत्तम कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर शत्रुघ्न जी से वार्तालाप आरंभ किया। वार्तालाप क्यों आरंभ किया? श्री राम की उत्तम कथा सुनने के लिए। ये बातचीत करने का तरीका ये होता है, है ना? बातचीत करने का तरीका ये नहीं होता है समय बिताने के लिए कुछ बातें करना है, समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए बातें करना है। टाइम पास कर रहे हैं भाई, बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हो, टाइम तो कितना कीमती है। आपको मनुष्य का जीवन का जो टाइम मिला है ये टाइम फिर दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? तो राम कथा सुनने के लिए उन्होंने शत्रुघ्न जी से बात करना शुरू किया। सुमंत बोले, संपूर्ण लोकों के शिरोमणि भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करने वाले और मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले श्री राम अयोध्या में सुखपूर्वक तो विराज रहे हैं ना। ये सब लोग धन्य हैं जो सदा आनंदमग्न होकर अपने नेत्रों के द्वारा श्री राम के मुख का दर्शन करते हैं। अब मेरी कुल परंपरा और राज्य भूमि आदि सब वस्तुएं पूर्ण सफल हो गई। माता कामाक्षी देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कृपा की थी। माता कामाक्षी ने बड़ी कृपा की इसलिए आज क्या हुआ, मुझे आपका दर्शन हुआ। तो समुद के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने श्री राम के गुणों को प्रकट करने वाली सब कथाएं सुनाई और वे तीन रात तक वहां पर ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुमद ने शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और राजा ने शत्रुघ्न के सेवकों को बहुत से वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के धन दिए। तब शत्रुघ्न ने धनुष धारण किए हुए राजा सुमद को अपने साथ लेकर अपने मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जोते हुए अनेकों रथों के साथ वहां से यात्रा आरंभ की और हंसते हंसते रास्ते में चलने लगे। पयोष्णी नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और शत्रुओं पर प्रहार करने वाले सब योद्धा भी पीछे पीछे उनके साथ चलने लगे। वे तपस्वी ऋषियों की भांति के आश्रम देखते हुए और श्री राम का गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। तपस्वी मुनियों के आश्रम देखते हैं और श्री राम का गुणगान सुनते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन? शत्रुघ्न जी। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की ये वाणी सुनाई पड़ती थी, ये यज्ञ का घोड़ा चला जा रहा है जो श्री हरि के अवतार शत्रुघ्न जी के द्वारा सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले बानर और भगवत भक्ति भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे महर्षियों की बात सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आश्रम देखा जहां निरंतर वेदों की ध्वनि से अमंगल नष्ट हो रहा था। वहां का संपूर्ण आकाश अग्निहोत्र के समय दी जाने वाली आहुति के धूम से पवित्र हो गया था। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकों यूप उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे। वहां सिंह भी गऊओं की रक्षा करते थे। उस वन में सिंह क्या करते थे? गऊओं को खाते नहीं थे, गऊओं की रक्षा करते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते क्योंकि उन्हें भी कोई डर नहीं, क्योंकि वहां उन्हें बिल्लियों से भय नहीं था। ऐसा कोई स्थान देखा है? चूहों को बिल्लियों से भय नहीं और गऊओं को शेरों से भय नहीं। सांप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेलते थे। मोर और नेवले सांप को देखते ही काट देंगे, लेकिन सांप मोरों और नेवलों के साथ खेलते हैं। हाथी और शेर एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते हैं। हाथी शेर कभी मित्र होते हैं एक दूसरे? शेर तो हाथी को मार डालता है, आश्रम का ही प्रभाव। मृग वहां प्रेम पूर्वक चढ़ते रहते थे, कोई डर नहीं, उन्हें किसी से भय नहीं था। मृग तो बहुत भयभीत होते हैं। गऊओं के थन घड़ों के समान दिखाई देते हैं। गऊओं के थन कैसे दिखाई पड़ते हैं? घड़ों के समान, अगर दुहो तो घड़ा भर जाए। वहां की भूमि को मुनिवरों ने पवित्र कर दिया। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सुमति से पूछा। राम के मंत्री सुमति से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं। शत्रुघ्न जी बोले, सुमते, ये सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है? यहाँ सब जंतु आपस का वैर भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा, उनका वृत्तांत सुनकर के अपने को पवित्र करूंगा। शत्रुघ्न जी के ये वचन सुनकर श्री राम के मंत्री सुमति ने कहा कि हे देव, ये महर्षि च्यवन का आश्रम है। किसका आश्रम है? च्यवन महर्षि का आश्रम है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि च्यवन वही हैं जिन्होंने मनुपुत्र सरयाति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया। तो ये कथा तो लंबी है, इसको मैं छोड़ करके जो है फिर आगे की कथा सुना रहा हूँ कि च्यवन मुनि के आश्रम में शत्रुघ्न सुमति में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था। इतने में यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और घूम घूम कर अपने मुंह के अग्रभाग से दूबा के अंकुर चरने लगा। च्यवन मुनि के आश्रम पर शत्रुघ्न भी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनि मैं श्री राम का भाई और इस घोड़े का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। देखो भगवान के छोटे भाई कह रहे हैं, अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, शत्रुघ्न तुम्हारा कल्याण हो, इस यज्ञ रूपी घोड़े का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मर्षियों ये आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ कर रहे हैं। आश्चर्य है ना, राम को यज्ञ करने की क्या जरूरत है, जिनके नाम से ही मनुष्यों के सब पापों का नाश होता है तो वे भी यज्ञ कर रहे हैं। महान पापी पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं। महापातक संयोक्ता परदार रतान राम यन नाम स्मरण योक्ता मुदायांति परम गतिम। ये बात कौन कह रहे हैं, च्यवन मुनि कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं, महर्षियों से कह रहे हैं, जिनके चरण कमलों की धूल पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहल्या मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। युद्ध में जिनके रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उनके स्वरूप को प्राप्त कर लिया और योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और परम पद को प्राप्त हो गए, वही श्री राम यज्ञ कर रहे हैं। ये कैसी अद्भुत बात है, मेरा धन्य भाग है जो श्री राम के सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिनके नेत्रों जिनके नेत्रों का प्रांत मेघ के जल की समानता करता है, जिनकी नासिका मनोहर और भौहें सुंदर हैं और जो विनय से कुछ झुके हुए हैं, जेवा वही उत्तम है जो श्री राम के नामों का आदर से साथ कीर्तन करती है, जिसकी विपरीत आचरण करती है वो तो सांप की जीभ के समान है। साजेवा रघुनाथस नाम कीर्तन माधरां करोति विपरीताया फणिनो रसना समां। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया, अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से देखूंगा, उनके चरणों की रस से अपने शरीर को पवित्र करूंगा और उनके अत्यंत विचित्र वार्तों का वर्णन करके अपनी रचना को पवित्र करूंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम जागृत हो उठा, उनकी वाणी गदगद हो गई, किनकी, च्यवन मुनि की, और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ति, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यानमग्न हो गए, उन्हें अपने पराये का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामीन आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए। शत्रुघ्न जी क्या बोले कि आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री राम का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। क्या कह रहे हैं? श्री राम का बड़ा सौभाग्य कि आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं, उनका सौभाग्य। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ लेकर परिवार सहित वहां से चल पड़े। उन्हें पैदल जाते देख श्री राम का भक्त जानकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामी यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ऐसे उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए मुनि को पहुंचा आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से बेहबल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि श्रेष्ठ इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेम के कारण उनके शरीर में रोमांच हुआ। वे बोले, प्रभु आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। कथा जो है बहुत विस्तृत है, तो हम यहीं पर ही इस कथा को विश्राम करें या थोड़ा और पढ़ लूं। शिव जी कहते हैं, महर्षि च्यवन के तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्ववंदित ब्राह्मण बल की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहरकर जल पिया और सुख और आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चले। कुछ लोग हाथी पर थे, कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी सुमति के साथ घोड़ों से शोभित होने वाले रथ में बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़े के पीछे पीछे चले। वो घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। कहां पर आया? रत्नातट नाम का नगर है और वहां के राजा कौन है? विमल। सुन रहे आप लोग? नहीं सुन रहे हैं। राजा कौन है? विमल। और नगर का नाम क्या है? रत्नातट। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री राम का घोड़ा संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए, उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? शत्रुघ्न ने अभी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेक धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ चल दिए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री राम का मधुर नाम सुनकर सभी राजा उस घोड़े को प्रणाम करते थे और बहुमूल्य रत्न और धन भेंट देते थे। तो इस तरह से हमने कुछ कथा सुनी। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ, ये भी विष्णु तत्व है, चतुर्व्यूह है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरोध चतुर्व्यूह है। ठीक है ना। तो उसी चतुर्व्यूह में ये चार भाई हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है ना। सभी विष्णु तत्व हैं, लेकिन फिर भी इनमें श्रेष्ठ राम है, बाकी तीनों इनकी सेवा करते हैं। हालांकि चारों विष्णु तत्व हैं, लेकिन फिर भी श्री राम सबसे श्रेष्ठ हैं और उनकी सेवा में बाकी तीन रहते हैं हमेशा। और कोई प्रश्न? या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न, हाँ बोलिए। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम नहीं है, अश्वमेध का घोड़ा, इसकी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। ये श्याम कर्ण घोड़ा कहलाता है, श्याम कर्ण घोड़ा, जिसका एक कान जो है श्याम होता है, काला होता है, और बाकी पूरा घोड़ा चंद्रमा के समान सफेद। ऐसा घोड़ा मिलना मुश्किल है कि पूरा घोड़ा चंद्रमा के समान सफेद हो और एक कान जो है केवल काला हो, श्याम कर्ण घोड़ा कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ के लिए कोई भी घोड़ा, ऐसे नहीं कि कोई भी घोड़ा चुन लिया जाए, ऐसा नहीं होता है, कोई विशेष घोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जब शत्रुघ्न जी गए तो अनेक देशों को पार किया, अनेक राज्यों को पार किया, और सब राजा सिर झुकाते थे घोड़े को देख करके और श्री राम का गुणगान करते थे। तो शत्रुघ्न जी घोड़े के पीछे पीछे चलते हुए सब राजाओं से राम का गुणगान सुनते थे, तो क्या करते थे बदले में? हाँ, अपने माला, अपने आभूषण है, हाँ, तो बहुत से सामान जो है भेंट में देते थे। फिर घोड़ा कहाँ पर गया, कौन सी नगरी में गया? अहिच्छत्र नगरी में गया, जहाँ के राजा कौन थे? सुमद। तो सुमद राजा ने कामाक्षा देवी का मंदिर बनवाया। तो शत्रुघ्न जी ने पूछा कि ये मंदिर किसका है, किस देवता का मंदिर है, कैसे वो देवता इस मंदिर में आया? तो शत्रुघ्न जी ने पूरी कथा बताई। तो किस प्रकार की कथा है राजा सुमद की कथा, किस प्रकार की है, कौन बताएगा? है क्यों की थी जगदम्बा की पूजा?
वरदान राज्य का,
वो कारण क्या बना था? राजा शत्रु ने छीन लिया, उनके माता पिता और प्रजा भी मारे गए, तो उन्होंने अपने प्राण बचाए। और कामाक्षा देवी को प्रसन्न करने के लिए कितने साल तक तपस्या की थी?
12
साल तक। पहले 3 साल तक क्या किया?
एक पैर तक।
हाँ, 3 साल। फिर अगले 3 साल क्या किया?
पत्ते
सूखे पत्ते खाए। फिर अगले 3 साल तक क्या किया?
सर्दी गर्मी बरसात।
हाँ, सर्दी गर्मी बरसात को सहन किया। उसके बाद अगले 3 साल प्राणवायु को रोक लिया। तब माता जब प्रसन्न हुई और कहा कि तुम वर मांगो, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा?
मुक्ति का और राज्य प्राप्त हो जाए उनको, और मुक्ति प्राप्त हो जीवन के।
उन्होंने वर मांगा कि आप मेरा पालन कीजिए, है ना। और फिर जब देवी ने कहा कि नहीं नहीं तुम कुछ वर मांगो, तो देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान मांगा। तो वरदान नहीं मांगते थे, लेकिन जब देवी ने कहा कि मांगो, तो उन्होंने मांगा। हाँ मेरा राज्य निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए और शत्रु हाँ मुझे कभी पराजित ना कर सके, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। तो देवी ने उनको क्या आदेश दिया? हाँ आप निष्कंटक राज्य कीजिए, राज्य का पालन कीजिए और एक दिन अश्वमेध का घोड़ा यहाँ पर आएगा और श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी यहाँ पर आएंगे, तो तुम क्या करना उस समय? घोड़े को नहीं पकड़ना, फिर क्या करना? भेंट देना, सबको समर्पित कर देना और उनके साथ ही घोड़े की रक्षा में चले जाना। तो शत्रुघ्न जी उस समय थे ही और वही समय आ गया था और राजा को जब पता चला कि उनके राज्य में शत्रुघ्न जी आए हैं और उनके यज्ञ का घोड़ा आया है तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस तरह से राजा ने शत्रुघ्न जी को नगर भी पूरा दिखाया और अपने महल में ले गए और फिर अपनी पूरी संपत्ति अपना राज्य अर्पित किया और घोड़े की रक्षा में चल पड़े। शत्रुघ्न जी ने आज्ञा दी अपने पुत्र को राज्याभिषेक करो, तो अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया और घोड़े की रक्षा में जीवन भर के लिए चल पड़े इस तरह से। हाँ जी हाँ, तो बहुत लंबी कथा है, कई अध्यायों में किसने प्रयास किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ, इनका बहुत रोचक वर्णन है। श्री राम कथा महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय। Thank you.